दिन भर 21 अक्टूबर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। फरीदाबाद में दलित परिवार को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया गया। राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर अपनी नाराजगी दिखाई।
What is it a photo of? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo of?
दुनिया जहान की में आज चर्चा कनाडा के आम चुनाव की, जहां लंबे समय बाद लिबरल पार्टी की सत्ता में वापसी हुई।
कनाडा की जो आर्थिक स्थिति वो काफी कमजोर कर रही है। कनाडा खाली पेट्रोल और गैस बेचने वाला देश रह गया। मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हुई है, दूसरे जो एक्सपोर्ट्स है वो भी कमजोर हुए हैं पिछले 9 साल में।
जिक्र होगा छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ वायुसेना के इस्तेमाल का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। फरीदाबाद के सनपेड़ गांव में कथित तौर पर जिंदा जलाए गए दलितों के परिवार वालों से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीबों की सरकार नहीं है, इसलिए गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस बीच हरियाणा सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। इससे पहले आज दोपहर जब 2.5 साल के वैभव और 11 महीने की दिव्या के शव सफेद कफन में लिपटे हुए गांव पहुंचे, तो गुस्साए गांव वालों ने नारे लगाते हुए दोनों बच्चों के शव को लेकर दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान की आलोचना हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी नेता ने हिटलर को हॉलोकॉस्ट यानी यहूदियों के विध्वंस की सलाह दी थी। बेन्यामिन नेतन्याहू ने वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस में कहा कि हिटलर सिर्फ यूरोप से यहूदियों को निकालना चाहता था, लेकिन यरूशलम के मुख्य मुफ्ती हज अमीन अल हुसैनी ने उन्हें नष्ट करने की सलाह दी थी। ये हमले और 1920, 1921 और 1929 में यहूदियों पर किए गए हमले यरूशलम के मुफ्ती हज अमीन अल हुसैनी के उकसाने पर किए गए थे। इनको बाद में नूरनबर्ग के युद्ध अपराधों के मुकदमों में तलाशा जा रहा था, क्योंकि आखिरी समाधान निकालने में उनकी मुख्य भूमिका थी। वो बर्लिन चले गए। हिटलर यहूदियों को नष्ट नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ यहूदियों को यूरोप से निकालना चाहता था। तो मुफ्ती ने कहा कि अगर निकालेंगे तो वो यहाँ आएंगे। हिटलर ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा उन्हें जला दो। ये थे बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अचानक रूस के दौरे पर पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। सीरिया में युद्ध शुरू होने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में असद ने सीरिया में रूस के सैन्य हस्तक्षेप के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर रूस की मदद नहीं मिलती तो चरमपंथी सीरिया में ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते। रूस और तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान को फोन कर बशर अल असद के दौरे के बारे में जानकारी दी। अफगानिस्तान में सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि हेलमंड प्रांत की राजधानी लश्करगाह से तालिबान लड़ाकों को खदेड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लश्करगाह के बाहरी इलाकों में जबरदस्त लड़ाई जारी है। इससे पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पड़ोस के शहर बाबाजी पर कब्जा कर लिया है। लश्करगाह में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। फरीदाबाद में वल्लभगढ़ स्थित सुनपेड़ गांव में एक दलित परिवार को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात और आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और संजय कुमार पीड़ित परिवार से मिलने उस गांव पहुंचे। राहुल गांधी ने बहुत तीखे अंदाज में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर घटना के बारे में लापरवाह रहने के आरोप लगाए हैं। वहीं घटना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
भाग जाओ, भाग जाओ। बुधवार को पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों और दलित समुदाय के लोगों ने घटना के सभी दोषियों को पकड़े जाने की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक सभी दोषी नहीं पकड़ लिए जाते, घटना में मारे गए बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात और आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और संजय कुमार भी पीड़ित परिवार से मिलने सोनपेड़ पहुंचे। राहुल गांधी पहले पीड़ित परिवार से मिले और उसके बाद दलित समुदाय के लोगों के साथ बैठकर उन्होंने उनसे काफी देर बात की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें घटना के लिए दोषी बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वे मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए दबाव डालेंगे।
क्या आप दबाव डालेंगे सीबीआई जांच के लिए सरकार पर?
बिल्कुल दबाव डालेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हो और हम इसके लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।
मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी उस वक्त बिफर पड़े जब उनसे पूछा गया कि भाजपा उनके यहाँ आने को फोटो खिंचवाने के एक अवसर की तरह बता रही है।
What is it, a photo op? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op?
कांग्रेस ने भाजपा की ओर से लगाए जा रहे फोटो ऑप के आरोपों को बड़ी सख्ती से लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर एक पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री अपने योगा डे, स्वच्छ भारत अभियान और मन की बात कार्यक्रम फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए करते हैं, लेकिन दलितों के दर्द को बांटने गए राहुल गांधी पर फोटो ऑप के आरोप लगाते हैं। इससे पहले सुबह माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात भी यहां पहुंची थी। उन्होंने इस घटना में पुलिस की मिली भगत होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह पूरी तरह सरकार की असफलता है।
इतनी निर्मम और बर्बर हत्या ये हुई है और प्रशासन की इसमें पूरी असफलता है। पुलिस क्या कर रही थी? अभी आज सारी पुलिस यहाँ खड़ी है।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष का कहना है कि यह घटना एक साजिश हो सकती है।
इस परिवार को पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ था, 6 जवान को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ, गांव वालों के मुताबिक यहाँ पुलिस के जवान नहीं थे। इसका मतलब ये है, या तो ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है या फिर पुलिस वाले जो है वो अपनी लापरवाही कर रहे थे।
हरियाणा सरकार इस घटना की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने सोनपेड़ गांव पहुंचने वाले थे, लेकिन बाद में उनका ये दौरा टल गया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में इस परिवार के घर में केरोसिन छिड़क कर आग लगाए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता पिता भी झुलस गए थे।
ये थी रोहित जोशी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दीर्घकालिक लक्ष्य माने जाते हैं गोहत्या पर प्रतिबंध लागू करना, लव जिहाद को रोकना और मुस्लिम और दूसरे समुदायों के लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करना, जिसे घर वापसी अभियान का नाम दिया जा रहा है। लेकिन संघ के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धर्म परिवर्तन पर एक नया कानून तो चाहते हैं, साथ ही मुस्लिम समुदाय को संघ में जगह देने की भी राय रखते हैं। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इरादे और हौसले बुलंद हैं। संघ धर्म परिवर्तन पर नया कानून चाहता है, जैसा कि संघ विचारक राकेश सिन्हा ने मुझे बताया।
धर्म परिवर्तन पर कानून बने, क्या यह मांग करने का और कन्वर्जन धर्म परिवर्तन पर विमर्श करने का क्या अधिकार नहीं है? क्या वो लोकतंत्र
में विमर्श करना तो बहुत ही अच्छी बात है, एक सिविलाइज सोसाइटी में विमर्श करना चाहिए, लेकिन उस पर हमला हो, उस पर ताने कसे जाए, किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जाए, इस पर लोगों का मेरे ख्याल से आपत्ति
है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भारत में चर्चों के साथ कुछ घटनाएं घटी दिल्ली के चुनाव के समय में। पूरी मीडिया का विमर्श देख जाइए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने किसको जिम्मेदार ठहराया? हिंदुत्ववादी ताकतों को। अब जब सारे इन्वेस्टिगेशन सामने आ गए, किसी भी हमले में किसी भी वैचारिक पक्ष का या वैचारिक कार्यकर्ता का हाथ नहीं हो, वो सामान्य रूप से कानून और व्यवस्था का सवाल था।
एक तरफ आरएसएस धर्म परिवर्तन पर कानून की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ घर वापसी का अभियान भी चला रहा है। इस अभियान के तहत संघ परिवार मुस्लिम और ईसाई समुदायों को हिंदू धर्म में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। संघ परिवार के ख्याल में मुस्लिम समुदाय के अंदर राष्ट्रवादी विचार की कमी है। प्रयास यह है कि मुसलमानों के अंदर राष्ट्रवादी विचार पैदा हो, जैसा कि आरएसएस के विचारक मुरलीधर राव कहते हैं,
एक स्वयं प्रेरित देश के मुसलमानों के अंदर राष्ट्रवाद की विचार की जागरण हो, और जैसे अन्य क्षेत्रों में भी होता है, उसमें कोई स्वयं प्रयास ऐसे कुछ लोगों के द्वारा हो रहा है ऐसा लगता है। मैं भी कई
उसमें भी आरएसएस के लोग हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने
नहीं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कई लोग इस प्रकार के गतिविधियों में दिखाई देते हैं, है और सक्रिय रूप से भी दिखाई देते हैं।
लेकिन संघ परिवार से जुड़े कई लोग अक्सर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की भी सलाह देते रहते हैं। मुसलमान कहते हैं कि भारत उनका देश है तो उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकियां क्यों दी जाती हैं। वो कहते हैं कि आरएसएस को पहले ये फैसला कर लेना चाहिए कि मुसलमानों और हिंदुओं का डीएनए अगर एक है तो फिर उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकी क्यों दी जाती है। आरएसएस में कुछ लोग ये राय रखते हैं कि मुसलमानों को साथ लेकर चलना अब ज़रूरी है और उनके लिए संघ का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र मंच की स्थापना इस तरफ एक कदम है, जैसा कि इसके एक सदस्य मोहम्मद बिलाल कहते हैं।
तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा ये कोशिश हुई है और आरएसएस के द्वारा भी ये कोशिश हुई है कि हमारे संबंध आपस में इस तरह के मोहब्बत वाले हों,
तालमेल, हिंदू मुसलमान के बीच में,
जी जी हिंदू मुसलमान के बीच में, सोसाइटी के बीच में। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पहल पर, आरएसएस की पहल पर हम सब साथी जो काम कर रहे हैं, तो माना कि वर्तमान समय में फिलहाल हमारा वजूद जुगनू की तरह है घनघोरी रात, घनघोरी काली रात में, लेकिन हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह सुबह होगी और नया बदलाव आएगा।
आरएसएस की भारतीय मुसलमानों के प्रति राय बदल रही है, लेकिन इस तरह के विचार रखने वाले संघ के अंदर कुछ ही लोग हैं। हाँ, ये संभव है कि भविष्य में मुसलमानों को भी इस संगठन में जगह दी जाए। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
बिहार विधानसभा चुनाव पर बीबीसी की विशेष सीरीज बूझिए ना बिहार को में आज जानते हैं कि क्या बिहार का चुनाव केवल अपराधियों का चुनाव है।
बूझिए ना बिहार को सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल।
बिहार के चुनाव में अपराधी भी तादाद में खड़े होते हैं, क्या बिहार चुनाव केवल अपराधियों का चुनाव है?
सामान्य धारणा तो यही है, बिहार चुनाव केवल अपराधियों का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अपराधी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। वास्तविकता क्या है? मुझे लगता है वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों में कई आपराधिक मामले लंबित हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 35-36 फीसदी ऐसे उम्मीदवार थे जिनपे कोई आपराधिक मामले थे। निर्वाचित विधायकों के बीच में अगर देखें तो लगभग आधे विधायक ऐसे थे जिनपे कोई न कोई एक आपराधिक मामला था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बिहार के विधानसभा चुनाव, जो 2010 का विधानसभा चुनाव देखें, 2005 का विधानसभा चुनाव देखें या उसके पहले के विधानसभा चुनाव देखें, ऐसे विधानसभा चुनाव रहे हैं जहां आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट या उनपे मामले डाले गए हों, ऐसे कैंडिडेट चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव जीत करके भी आते हैं।
दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करें तो क्या स्थिति है?
ये एक अहम बात है। अगर हम किसी आंकड़ों को एक स्टैंडअलोन देखते हैं, अपने आप आंकड़ों को देखते हैं, तो वो आंकड़े स्पष्ट बात नहीं बताते। ये जरूर है, ऐसा देख के हमें लगता है कि अगर 35% उम्मीदवार बिहार में दागी छवि के हैं तो ऐसा भ्रम पैदा होने लगता है कि शायद बड़ी संख्या में बिहार में अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे राज्यों से तुलना करें तो कोई दूसरे राज्यों की स्थिति कोई बहुत भिन्न नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश से तुलना करें, उड़ीसा से तुलना करें, तो दूसरे राज्यों में भी ऐसी बड़ी तादाद में उम्मीदवार होते हैं जिनपे कोई ना कोई आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। इस मामले में बिहार कोई दूसरे राज्य से अलग नहीं है, परंतु भ्रांति यह है कि बिहार का चुनाव सिर्फ अपराधियों का चुनाव है, बिहार का चुनाव सिर्फ अपराधी चुनाव जीतते हैं।
बूझिए ना बिहार को,
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। छत्तीसगढ़ में भारतीय वायुसेना और पुलिस माओवादियों के खिलाफ हवाई हमले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य के बीजापुर में वायुसेना और पुलिस के जवान लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन राज्य में नक्सल विरोधी अभियान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर के विज का कहना है कि ये कार्रवाई केवल जवाबी होगी और आत्मरक्षा के लिए होगी। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पिछले कई सालों से सुरक्षा बल के जवानों को लाने ले जाने, घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और जंगल के भीतर कैंप बनाकर रह रहे जवानों को राशन पहुंचाने के लिए होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से माओवादी लगातार इन हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाते रहे हैं, जिसमें कई बार वायुसेना और पुलिस के जवानों को नुकसान उठाना पड़ा है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए हवाई हमला करने की घोषणा की है। हालांकि बस्तर के आईजी पुलिस एसआरपी कल्लूरी का कहना है कि पुलिस केवल बचाव के लिए ही हमला कर सकती है।
फोर्स यूज करने का एकमात्र प्रावधान है राइट टू सेल्फ डिफेंस के लिए। अब एरियल अटैक के लिए फिर तो कानून ही बदलना पड़ेगा, वो तो सिर्फ वॉर्स में यूज हो सकते हैं। अभी हम केवल व्हेन फायर्ड अपॉन हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हम अपने से फायर भी नहीं करना चाहिए। जो सीआरपीसी के धारा के तहत या आईपीसी धारा के तहत हम अभी ऑपरेट करते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ सेल्फ डिफेंस का ही प्रावधान है, और एरियल बॉम्बिंग के लिए फिर कानून सब बदलना।
राज्य में नक्सल विरोधी अभियान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर के विज का भी दावा है कि माओवादियों के खिलाफ यह हवाई हमला मूलतः जवाबी हमला होगा।
नहीं, तैयार किया है, ऐसा नहीं है, हमने प्रैक्टिस किया है हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए कि इन केस यू नो हेलीकॉप्टर इज फायर्ड अपॉन एंड वी कैन सी द एनिमी, सो इन सेल्फ डिफेंस वी कैन सॉल्व दैट। ऑलरेडी लीगल है, बट प्रैक्टिस इसको अभी किया। हवाई हमला नहीं है ये, जब इस पे अटैक होगा, जब हमारे पे अटैक होगा तब हम रिटर।
लेकिन मानवाधिकार संगठन विज की इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की महासचिव और हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुधा भारद्वाज का कहना है कि जमीनी लड़ाई में भी पुलिस किस तरह से सारे नियम कानून को ताक पर रखकर पेश आती है, उसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं।
कि तो नरसंहार वाली स्थिति हो सकती है, और यही थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि एक तरफ माओवादियों को या नक्सलाइट्स को ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़े गंभीर ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, दूसरी तरफ सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इंटरनल आर्म स्ट्रगल की सिचुएशन है। देखिए, यदि वो एक इंटरनल आर्म स्ट्रगल को स्वीकार करता है तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक मॉनिटरिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक जो आदिवासियों के एक नरसंहार की बात है वो एक काफ़ी एक चिंता का विषय हो जाता है।
छत्तीसगढ़ में पुलिस का दावा है कि वह माओवादियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही है। इस आर पार की कथित लड़ाई में हवाई हमले का क्या असर होगा, इस पर फिलहाल कम से कम सरकार की ओर से कोई नहीं बोलना चाहता। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दिए माफीनामे और फिर उसे वापस लिए जाने के मुद्दे पर सिखों की संस्था अकाल तख्त के पंच प्यारों ने जत्थेदारों को तलब किया है। कुछ दिन पहले अकाल तख्त की बैठक में कहा गया था कि डेरा प्रमुख ने माफी मांगी है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
पंजाब में बीते एक पखवाड़े से विभिन्न धार्मिक मुद्दों पर मचे बवाल पर पहली बार सिख धर्म के पांचों तख्तों के जथेदारों को दरकिनार करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के पांचों प्यारों ने सभी सिख धार्मिक मामलों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। सिख समुदाय का विश्वास खो चुके पांचों तख्तों के जथेदारों को अकाल तख्त साहिब के पांच प्यारों ने 23 अक्टूबर को अकाल तख्त साहिब पर तलब कर लिया है। पांचों प्यारों ने अपने आदेश में कहा,
तख्त साहिबान दे सेवादारा नू फैसला करन तो पहला इस नाल जुड़े सन 2007 तो आ रहे घटना क्रम ते पंथक जथेबंदियां नाल दीर्घ विचार करना चाहिदा सी।
पांचों प्यारों ने पांच तख्तों के जथेदारों को निर्देश दिया है कि वे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पहले माफीनामा देने और बाद में गुरमता वापिस लेने पर अपना स्पष्टीकरण दें। आज श्री अकाल तख्त पर पांचों तख्तों के जथेदारों ने इस बात चर्चा हेतु एक बैठक बुलाई थी। बैठक में इस बात पर विशेष तौर पर चर्चा की गई कि पांचों जथेदारों ने सिख पंथ को विश्वास में लिए बिना डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को माफ क्यों किया, और उनका मानना था कि इस फैसले को लेने से पहले खालसा पंथ में एक आम राय बनानी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं बनाई। सिख इतिहास में दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के कार्यकाल के दौरान पांचों प्यारों ने अपनी धार्मिक अधिकारों का प्रयोग किया था। सिख धर्म में पांच प्रधानी प्रणाली सुप्रीम है, और जब जब सिख धर्म में संकट आया पांच प्यारों ने अगुवाई की है। अमृतसर से बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन।
बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा करने मॉस्को पहुंच गए हैं। 2011 में सीरिया में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब सीरियाई राष्ट्रपति देश से कहीं बाहर गए हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए रोहित जोशी से।
रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता डमित्री पेस्कोव ने बताया है कि दोनों नेताओं के बीच मंगलवार की शाम मुलाकात हुई और उन्होंने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ चल रही रूस की सैन्य कार्रवाई पर चर्चा की है। रूस के एक टेलीविजन में दोनों नेताओं के बीच हुई बातें प्रसारित की गई हैं। इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वे सीरियाई संकट के लिए न केवल सैन्य मदद करने को तैयार हैं, बल्कि किसी शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। सीरिया हमारा मित्र है और हम न केवल चरमपंथ से लड़ने में बल्कि दूसरी राजनीतिक शक्तियों और इस इलाके के और देशों के साथ मिलकर इस समस्या का शांतिपूर्ण हल खोजने के लिए किए जा रहे राजनीतिक प्रयासों में सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। टेलीविजन में प्रसारित इस वीडियो में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूसी राष्ट्रपति के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि रूस की मदद के बगैर इस्लामिक स्टेट के और भी अधिक इलाके में फैलने का खतरा है।
I would like to thank you, Mr. President.
मैं राष्ट्रपति पुतिन को शुक्रिया कहना चाहूँगा और साथ ही मैं रूसी अधिकारियों और यहाँ की जनता को भी सीरिया की जनता के सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। सबसे अहम ये है कि ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक हो रहा है। सीरिया के संकट की शुरुआत से ही रूस की ओर से जो भी कदम उठाए गए हैं उसने यहाँ हालातों को बिगड़ने नहीं दिया। अगर रूस ने कार्रवाई नहीं की होती तो जो चरमपंथ बड़े इलाकों में फैल गया है वो पूरे देश में और देश की सीमाओं से बाहर भी फैल गया होता। ये थे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के शब्द। दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता पीटर कुक ने बताया है कि इस समझौते के बाद ये तय किया जा सकेगा कि दोनों देशों के विमान एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रहें। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि क्या कोई खास दूरी निश्चित की गई है, लेकिन दोनों देश अपने लक्ष्यों पर खुफिया जानकारी साझा नहीं करेंगे। रूस ने 30 सितंबर को सीरिया पर हवाई हमले शुरू किए थे। पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा था कि दोनों ही देशों के विमान एक ही हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गए थे और एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। सितंबर से ही दोनों देशों के अधिकारी इस सिलसिले में किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
सीरिया के राष्ट्रपति रूस पहुंचे। कनाडा में लंबे समय के बाद लिबरल पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। 9 साल बाद सत्ता से बाहर हुई कंजर्वेटिव पार्टी पर देश की छवि बिगाड़ने और देश की आर्थिक स्थिति को बुरे हाल में पहुंचाने का जिम्मेदार माना जाता है। देश के नए नेता जस्टिन ट्रूडो के पास पीरे ट्रूडो की विरासत और चमकदार छवि का करिश्मा है। कनाडा में इस बार का चुनाव भारत के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है। इस बार के दुनिया जहान में निखिल रंजन इसी चुनाव की कहानी बयान कर रहे हैं।
दुनिया जहान।
My friends, we beat fear with hope. We beat cynicism.
मेरे दोस्तों, हमने डर को उम्मीद से हरा दिया है। हमने निराशावाद को कठोर परिश्रम से हरा दिया है। हमने सकारात्मक दृष्टि जो कनाडाई लोगों को साथ लाती है उससे नकारात्मक और बांटने वाली राजनीति को हरा दिया है।
कनाडा से 9 साल पुरानी स्टीफन हार्पर सरकार की विदाई तय करने के बाद भावी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ये सकारात्मक सोच की विजय है। छोटी सी उम्र में जो जीत उन्होंने अपनी लिबरल पार्टी को दिलाई है वो हैरान करने वाली है। नतीजे का ऐलान जब हुआ तब कई इलाकों में लोग अभी वोट डाल ही रहे थे। कनाडा इसे बदलाव और राहत लाने वाला मान रहा है और खुशी उन लोगों को भी है जो जीतने वाली पार्टी से नहीं जुड़े।
मैं लिबरल पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूं, फिर भी कहती हूं ये कंजर्वेटिव पार्टी से बेहतर है।
Such a relief. Such a relief. Thanks God. He's been there for so long and that the reputation of the Canada is so bad now because of him, so we have to change that.
बहुत राहत है। भगवान का शुक्र है कि वो जीत गए। वो लंबे समय तक सत्ता में रहे और देश की छवि बहुत खराब हो गई। मुझे लगता है कि कनाडा जाग गया है। लोगों ने अब फैसला किया वोट देने का, जो वो आमतौर पर नहीं करते, लेकिन अब अति हो गई थी, इसीलिए लोगों ने इसे बदला।
स्टीफन हार्पर वाली कंजर्वेटिव पार्टी लगातार 4 बार से जीत रही थी। आधुनिक और उदार कनाडा बीते एक दशक में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। आखिर हार्पर ने ऐसा क्या किया कि उनकी हार कनाडा के लिए राहत कही जाने लगी है? जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नाफे।
स्टीफन हार्पर की जो पॉलिसी थी वो कुछ मैवरिक पॉलिसी थी, और मैवरिक पॉलिसी यूं थी, एक तो उनको एंग्लोस्फीयर बड़ा अच्छा लगता था, कि वो सारे देश जो अंग्रेजी बोलते हैं बस वहीं कनाडा कंफर्टेबल है, बाकी थर्ड वर्ल्ड से, एशिया से, अफ्रीका से, सब जगह से कनाडा अपना रिश्ते थोड़े थोड़े दूर कर ले। दूसरा उनकी प्रॉब्लम ये थी, उन्हें कुछ इसराइल से क्यों इतनी मोहब्बत थी वो वही जानते हैं, बिना वजह में सारे अरब देशों को नाराज किया। कोई प्रो इसराइल होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई कारण मुझे नहीं नजर आता। दूसरा उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी कि ये था कि कनाडा ग्रेट पावर बन जाए। कनाडा कहाँ से ग्रेट पावर बन गया है? अभी तो एमर्जिंग पावर इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे, रशिया जैसे देशों को माना जाता है।
स्टीफन हार्पर को सिर्फ देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को बुरे हाल में पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है।
कनाडा की जो आर्थिक स्थिति वो काफी कमजोर करी है। कनाडा खाली पेट्रोल और गैस बेचने वाला देश रह गया, मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हुई है, दूसरे जो एक्सपोर्ट्स है वो भी कमजोर हुए हैं पिछले 9 साल में, और जैसे ऑयल प्राइसेस गिरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इसलिए कनाडा के अंदर रिसेशन आया है पिछले 6 महीने से। तो जो एक डाइवर्सिटी थी इकोनॉमी की वो भी कमजोर की है स्टीफन हार्पर ने।
जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो लंबे समय तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका आखिरी कार्यकाल 1984 में खत्म हुआ। उन्हें आधुनिक कनाडा का रचनाकार भी कहा जाता है। कनाडा में उद्योगों का विकास उन्हीं के दौर में शुरू हुआ और आगे बढ़ा, जिसके दम पर बेरोजगारी की समस्या दूर करने में देश सक्षम हो सका। प्रधानमंत्री रहते हुए वो भारत भी आए थे, कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त आर एल नारायण।
वो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, उनके रिश्ते थे, बहुत क्लोज ताल्लुकात थे पंडित नेहरू के साथ, और जो हमारे आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो उस बेसिस पे उनका बहुत वो था, और इंडो कैनेडियन टाइज जो है तब उस टाइम पे बहुत क्लोज हो गए थे, विजिट्स वर एक्सचेंज्ड आल्सो। ही वाज अ ग्रेट लीडर एंड अब इनके जो सन आए हैं आई होपफुली ही विल आल्सो कैरी इट फॉरवर्ड।
इन चुनावों ने देश की आबादी में हुए एक बड़े बदलाव की वानगी भी सामने रख दी है। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में अब करीब 6% सांसद भारतीय मूल के हैं। बीते सालों में यहां भारतीय प्रवासियों की तादाद बढ़ने के साथ ही उनका राजनीतिक कद भी बढ़ा है। जनसंख्या के अनुपात में अमेरिका से ज्यादा भारतीय मूल के लोग कनाडा में हैं। प्रोफेसर अब्दुल नाफे,
सच बात है इतनी ज्यादा सीटें कभी भी जो भारतीय मूल के लोग हैं दुनिया के किसी और देश में नहीं जीत सकते। मैं तो क्रेडिट दूंगा कनाडा के मल्टीकल्चरलिज्म, सरकारें कुछ भी करती रहे, राइट विंग गवर्नमेंट आ जाए, लेफ्ट विंग आ जाए, लेकिन एक सेकुलर अप्रोच जो है वहां का कल्चर का हिस्सा है। भारतीय मूल के लोगों ने सीटें जीती हैं, 3-4 जगह से जीती हैं। एक तो ब्रिटिश कोलंबिया में विक्टोरिया वगैरह के आसपास, वैंकूवर के आसपास पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है। उसके बाद ओंटारियो में अगर हम देखें तो ब्रैम्पटन, मिसिसोगा, वहाँ काफी भारतीय मूल के स्पेशली सिख समुदाय के लोग बहुत रहते हैं। यहाँ दूसरे इमिग्रेंट्स भी रहते हैं जैसे अफगान से, ईरानियंस हैं, साउथ एशिया के दूसरे देशों के लोग भी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये एक एथनिक बॉन्डिंग भी इमिग्रेंट्स में मुझे नजर आती है ब्रैम्पटन और मिसिसोगा के दौरान, कि कैंडिडेट अगर कोई इंडियन भारतीय मूल का है तो उसको ईरानियत, अफगान लोग जो वो भी उसको वोट देने की कोशिश करते हैं, एक झुकाव सा होता है उसकी तरफ।
इस साल क्रिसमस के दिन जस्टिन ट्रूडो 44 साल के होंगे। चुनाव में बड़ी जीत के पीछे उनके पिता की विरासत के साथ ही उनकी युवा छवि को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा कारण रहा है स्टीफन हार्पर के प्रति लोगों का गुस्सा, लेकिन जितने कम समय में जस्टिन ने पासा पलटा है इसका श्रेय उन्हें जरूर जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्टीफन हार्पर के अनुभव से उन्होंने जरूर कुछ सीखा होगा। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के सनपेड़ गांव में दलित परिवार को जिंदा जलाने के मामले में CBI जांच की सिफारिश कर दी है। पीड़ित परिवार से मिलने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सनपेड़ पहुंचे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान की आलोचना हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी नेता ने हिटलर को हॉलोकॉस्ट यानी यहूदियों के विध्वंस की सलाह दी थी। अचानक रूस के दौरे पर पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और सीरिया में रूस के सैन्य हस्तक्षेप के लिए शुक्रिया अदा किया। दक्षिण अफ्रीका में दंगारोधी पुलिस ने केप टाउन में संसद के बाहर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर रबर बुलेट और स्टैन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जिसमें कम से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।